क्या हाल है आपका? फिर बोलो। चलिए, कुछ हाल बेहतर हुआ। हमारा हाल ये कि हम अल्हम्दुलिल्लाह भी ऐसे कहते हैं जैसे 70 शिकवे होते हैं दिल में, है? तो दिल की गहराई से अंदर से कह करें अल्हम्दुलिल्लाह। फिर के? क्या हाल है आपका? दिल की दिल तक पहुंच रहा, किसी हलक तक रहता है, लेकिन अभी वो सूरत फातिहा की तफसीर भी तो नहीं हुई ना। अभी जब अलहम्द की तफसीर होगी फिर आप देखेंगे कि वो दिल के तारों को छू के जाती है। हाँ ना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप देखें कि वला इन शकर तुम लाजीदन्नकुम वला इन कफर तुम इन नाजाबी लशदीद। अल्लाह ने आपको एक मौका दिया, आपने उसको अवेल किया। अवेल करते जाएंगे, हिदायत के मौके बढ़ते जाएंगे, रूल्स को फॉलो करते रहेंगे और मौके बढ़ेंगे। हर चीज़ को फोकस करके, टाइम को लेकर, हर चीज़ अगर आप दी एक्सीलेंसी से कम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही कोई नहीं तो आप देखिएगा हिदायत बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। और एक अगर एक चीज़ से ग्रिप लूज़ करेंगे थोड़े दिन में दूसरे से होगी, तीसरे से होकर एक वक्त आएगा आपका फोकस टूट जाएगा। तो एक दो सजेशन है मेरे पास कि ये साइड के जो दो टेबल्स हैं इनको भी सामने मूव करें, मोर आई कॉन्टैक्ट होता है। अभी कहूँगी तो शायद आपको टू अर्ली लगेगा, लेकिन आप नेक्स्ट क्लास से पहले अगर चाहें तो इधर सामने सामने यानी इस बीच में बैठे साइड्स को वॉक इन कर दें तो आप फील करेंगे कि आपकी ग्रिप बढ़ेगी। फिर सामने ज़्यादा चीज़ होती है ना, क्लोज सर्किट होता है, ठीक है। जब आप सबने स्कार्फ एक जैसे पहने होंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारी भी फोकस ज़्यादा बढ़ेगा। फ़र्क पड़ता है एक जैसे यूनिफॉर्म से? पढ़ता है ना, रोज़ का ये गम भी ख़त्म हो जाता है कि आज क्या पहनेंगे, है? तो चलिए, अभी हमने कुछ दुआएं सुनी, आपको फ़ायदा हुआ इल्म की दुआओं का, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दो दुआएं और करेंगे और आज हम इतनी दुआएं इसलिए इकट्ठी मांग रहे हैं ताकि हम फिर रोज़ इन दुआओं को याद करके इंशाल्लाह आगे से आगे ले सकते हैं। तो आपके पास आज शायद हैंड आउट नहीं है मुझे लग रहा है, लेकिन उधर उस क्लास में थे आप लोग, चाहें तो उनसे इंशाल्लाह आप इस क्लास को भी प्रोवाइड कर दें। हर दिन क्लास के शुरू में आप लोग पढ़ा करें, सब मिलके पढ़ें, इस वक्त तक देख के पढ़ते रहे जब तक कि आपको याद ना हो जाए। और बस वो ऐसे नहीं पढ़नी आदतन, बल्कि आपने उनको पढ़नी है किस तरह से, यकीन के साथ, शौक के साथ पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير। चलिए अगली दुआ पे चलते हैं। मेरे साथ एक एक लफ्ज़ दोहराएंगे आप, फिर इंशाल्लाह हम इसका तर्जमा लिखेंगे। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا वज़िदना इल्मा। दोबारा पढ़ते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि आपकी नज़रें इधर उधर घूम रही हैं, आपकी आवाज़ों से फील हो रहा था कि आप सब फोकस्ड नहीं है, हैं। तब दोबारा पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मन्फ़ाना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यन्फ़ाउना वज़िदना इल्मा। एक एक लफ्ज़ का तर्जमा लिखेंगे। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्फ़ाना नफ़ा दे हमको बिमा साथ इसके जो अल्लमतना तूने इल्म दिया हमको वअल्लिमना और हमें इल्म दे मा यन्फाउना जो नफ़ा दे हमको वज़िदना और ज़्यादा कर हमको इल्मा इल्मे। फिर बोलती हूँ अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्फाना नफ़ा दे हमको बिमा साथ उसके जो अल्लमतना इल्म दिया तूने हमको वअल्लिमना और इल्म दे हमको मा यन्फाउना जो नफ़ा दे हमको वज़िदना और ज़्यादा कर हमको इल्मा इल्म के एतबार से। एक स्ट्रेच में कैसे पढ़ेंगे, ए अल्लाह हमें उस इल्म से नफ़ा दे जो तूने हमें अता किया, और हमें वो इल्म दे जो हमें नफ़ा दे और हमारे इल्म को बढ़ा दे। ओ अल्लाह बेनिफिट अस थ्रू व्हाट यू टीच अस एंड टीच अस व्हाट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस एंड इंक्रीज अस इन नॉलेज। इब्न माजा की ये रिवायत है। अगर आप देखें तो हम इसमें तीन चीज़ों का सवाल करते हैं, बहुत ही खूबसूरत दुआ है। पहली चीज़ ये कि जो इल्म ऑलरेडी हमें मिल चुका है हमें उससे फ़ायदा लेने वाला बना दें। ये बिल्कुल ऐसी ही दुआ है जैसे आप कहते हैं कि अल्लाह जो बर्तन मेरे घर में हैं मैं उनसे फ़ायदा भी तो उठाऊँ, जो कपड़े मेरे पास हैं मैं उनको पहनूँ भी, क्योंकि बाज़ दफ़ा चीज़ों को लेकर रख लेते हैं हम लोग, इस्तेमाल नहीं करते, फ़ायदा नहीं उठा सकते उन चीज़ों से। नुकसान क्या होता है, बजाय इसके कि वो चीज़ें हमारी खिदमत करें हम उनकी खिदमत करने वाले बन जाते हैं और चीज़ों के ग़ुलाम बनकर अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर देते हैं। जिस तरह बाज़ लोगों को चीज़ें लेने का तो शौक़ होता है और इस्तेमाल करते वक्त खौफ क्या होता है, पुरानी हो जाएंगी, खिस जाएंगी, और फिर इसके बाद ये होगा और वो होगा जो भी होगा, तो कहते हैं नहीं नहीं इल्म को भी लेना ज़रूर है, इस्तेमाल कोई नहीं करना। अब इमेजिनेशन में लाइए कि आप एक कपड़ा लेकर आए और अलमारी में लटका दिया। जब कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होती इस खौफ के तहत कि ख़राब ना हो, तो क्या वो ख़राब नहीं होती? अंदर बंद पड़े पड़े कपड़ों में कीड़ा लग जाता है, बाज़ दफ़ा ह्यूमिडिटी की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आप कहते हो खो इसको हवा लगती रहती ना तो ये ठीक रहता। कोई घर बनाए फिर उसको बंद कर दे कि नहीं अंदर गए तो पता नहीं क्या गंदगी होगी, ख़राब होगा, पता चला 6 माह बाद जब खोला तो वो अंदर सब फफूंदी लग चुकी है। इसी तरह से याद रखिएगा, इल्म को जितनी हवा लगाएंगे उतना ये फैलेगा, इतना इसका नफ़ा अच्छा होगा। कपड़े को देखिए, नया कपड़ा मुश्किल लगता पहनना, चुभता है, उसमें एक ख़ास यकड़ होती है, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आप ख़ुद भी कॉन्शियस होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जब वो कपड़े इस्तेमाल होते हैं ना तो यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। आप कहते हैं नहीं घिसे हुए कपड़े चाहिए, नाइट सूट चाहिए, 2 साल पुराना सूट चाहिए, बिल्कुल यही कैफियत इल्म की है। आज आपको वो इल्म बहुत मुश्किल लग रहा है, लिखना नहीं आ रहा, पढ़ना नहीं आ रहा, फोकस करना नहीं आ रहा, किसी को स्काफ बांधना नहीं आएगा, किसी को बुक्स पे लिखना नहीं आएगा। अभी आपका इल्म नया कपड़ा है, इस्तेमाल करते जाएंगे करते जाएंगे, आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि आपको इसमें इसके बगैर चैन ही नहीं आएगा। जो सुकून यूज्ड और बहुत इस्तेमाल शुदा कपड़े को पहनकर होता है ना, वही पुराने इल्म का हाल है। लोग कहते हैं क्या तैयारी की आपने दर्स की, भाई दर्स के लिए तैयारी की क्या ज़रूरत होती है, आज कौन से नोट्स हैं आपके, भी नोट्स की क्या ज़रूरत होती है, क्या आप अपने बच्चों से लिख लिख के बातें करते हैं, वक्त के मुताबिक हालात के मुताबिक आप बातें करते हैं? तो इल्म वही इल्म है जो आपके अंदर हो। आपने बात सुनी होगी कि एक कोई बुज़ुर्ग थे तो वो इल्म हासिल करके जा रहे थे, तो रास्ते में डाकू आ गए, तो जब उन्होंने चीज़ें चोरी की तो उनके नोट्स भी चले गए। बाद में आके पूछा उस्ताद ने सुनाओ क्या, कहा उस्ताद साहब मेरे नोट्स तो चोरी हो गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा इल्म नोट्स में था कि तुम्हारे दिमाग में था? पहले दौर के उस्ताद जो होते थे ना वो याद करवाने पे बहुत जोर देते थे, कहते थे किताबें चोरी हो गईं, जल गईं, फट गईं, बह गईं, तुम्हारे दिमाग से तो नहीं जाएगा ना। तो इल्म से नफ़ा क्या होता है कि जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़े मैं इससे फ़ायदा उठा लूँ। अब आप इस दुआ को सोचिए, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा 'अल्लमतना, ए अल्लाह जो इल्म मैं ले चुकी हूँ अब मुझे उससे नफ़ा उठाने वाला बना। पिछली दुआ में जो बात हो रही थी उसी को सामने रखिए, इल्म के भी दो दर्जे हैं, दुनियावी इल्म और दीनी इल्म। बहुत सारे लोग दुनियावी इल्म हासिल करते हैं नफ़ा ही नहीं ले रहे, बैठे हुए तो बैठे हुए इसी तरह उसका तो गुजारा कर लें। आपको पता है कि इसलिए अपने इल्म से फ़ायदा लेना कि आपको जॉब मिलेगी, पैसे आएंगे, इस शौक में भी लोग ले लेते हैं, लेकिन इल्म जो बंद करके रख दिया जाए उससे नफ़ा लेंगे तो ज़्यादा होगा। तो अब आज से आप एक चीज छोटी सी समझे अपने लिए कि जो इल्म मुझे पहले मिला उससे नफा कैसे लूं। चलिए, आप में से किसी का पहला सफर है ये कोर्स का, पहली दफा कुरान पाक सीख रहे हैं, अभी तक बस बेसिक्स पे थे। अब यहाँ बीमा अल्लम ताना में क्या चीजें आएंगी जो आपने उर्दू इंग्लिश लिखनी सीखे थी, आपने मैथ भी थोड़ा सीखा होगा ना, कोई साइंटिफिक फैक्ट सीखेंगे। आप इस दुआ को मांगते ये नियत किया करें कि अल्लाह अभी तक जो कुछ मैंने दुनिया का भी सीखा था अब वो सारे का सारा मुझे इस इल्म में फ़ायदा दे। जैसे मैंने खुद जब कुरान का कोर्स किया और जब सीखना सिखाना शुरू किया तो मुझे बड़ी शिद्दत से इसका एहसास हुआ कि जो चीज़ें मैं अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ में पढ़ती थी करती थी उन्होंने मुझे यहाँ बहुत फ़ायदा दिया। यानी मैं खुद अपने दिल से कह सकती हूँ कि अगर मैंने साइंस ना पढ़ी होती तो मैं कभी भी शायद इतना गौर व फिक्र ना कर पाती कुरान की आयतों पे और ऐसी ऐसी निशानियाँ जो कायनात में दिखती हैं। तो आप यही दुआ किया करें कि अल्लाह आप रिलीजियस नॉलेज लेना है तो पिछले नॉलेज को इसमें लेकर आ। इसी तरह जब विरासत का मजमून मैंने पढ़ा मुझे उस वक्त अपनी मैथमेटिक की टीचर पे बहुत ही प्यार आया और मेरी आंखों के सामने वो हिसाब की किताब थी कि जिसमें सवाल ही हमारे दौर में ऐसे होते थे, एक शख्स मर गया और अपने पीछे इतना तरका छोड़ गया, दो बेटे फलां फूलां, शरई हक दीजिए। तो हम हंसते थे क्लास में, कहते थे आजकल बहुत लोग मर रहे हैं क्योंकि वो हर सवाल के नीचे किसी के मरने की खबर होती थी ना। तो लेकिन जब मैंने विरासत के सवाल किए तो मुझे ऐसे लगा मैंने अपनी मैथमेटिक्स की कापियाँ खोल ली हैं, तो वो पिछला याद किया हुआ भूला तो नहीं ना। इसी तरह मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश का कोर्स किया था, यानी कुरान पाक की तफसीर के कोर्सेज ऑफर किए जाते थे। लेकिन जब मेरी मंगनी हुई और मुझे पता लगा कि मैंने फ्यूचर में अमेरिका जाना है तो अब इंग्लिश कैसे सीधी करूं? डर तो यह था मियाँ को इंग्लिश आती है मुझे इंग्लिश ना आई, उनको उर्दू नहीं आती मुझे उर्दू आती है, तो हम बात क्या करेंगे। ये गम तो कम था कि शादी होगी इतनी दूर छोड़ के सबको चली जाऊंगी, ये गम ये था कि मियाँ से बात किस जुबान में करूँगी, धड़का लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि इसका बेस्ट तरीका ये है कि मैं एक तो कि इंग्लिश सीखूं। आपको तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट बन चुके हैं इंग्लिश सीखे इतने दिनों में इतनों में, पर वो आदत ही नहीं रही थी, वक्त ज़ाया लगता था। मेरे दिल में अल्लाह ने डाला कि ऐसा करती हूँ, कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करती हूँ कुरान पाक का कि जिसमें इंग्लिश के ऑप्शन हो। तो मैंने इंग्लिश सीखने के लिए कुरान का कोर्स इंग्लिश में ज्वाइन किया था। तो मंगनी से शादी का बीच का वक्त मैंने वो कोर्स किया बीच में, तो उससे मेरी ज़ुबान खुल गई ना। मैंने इंग्लिश में भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन याद किया हुआ है, मुझे इंग्लिश में भी बात करनी सुननी आती, बोलनी मुश्किल लगती, समझ तो मैं सारी थी और पीछे से सब्जेक्ट सारे साइंस के थे तो पढ़ी भी इंग्लिश थी लेकिन वो ज़ुबान पे नहीं थी ना। लेकिन वो सारी चीज़ें मेरे काम आ गई कब, जब मैंने आके वेस्ट में पढ़ना पढ़ाना शुरू किया। तो वो चीज़ें ज़ाया तो नहीं होती। मत सोचिए कि जो हमारी पिछली ज़िंदगी की मेहनतें थी वो ज़ाया हो गई, कभी ज़ाया नहीं होता। किसी जगह आपने कुछ छुपा के रखा हो कभी ना कभी खुलता है तो फ़ायदा दे ही जाता है। तो अल्लाहुम्मा अनफ़ाना बिमा अल्लमतना। अब पहली चीज़ समझ आ गई कि इल्म पहले मौजूद था, अब उससे नफ़ा लेना। आप इसी में और सोच सकते हैं, आपको खाना पकाना आता है, आपको कुछ भी, अब इससे नफ़ा क्या दें? आप अपने उस खाने पकाने को किसी अच्छे काम में लगाइए, किसी की हेल्प कीजिए। आपको गाड़ी चलानी आती है, इल्म है ना, तो आप कहें अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं अपनी गाड़ी में दो चार सिस्टर्स को और लेकर आऊँ। ये लमतना हो गया, ये यनफाउना हो गया। हमारे पास बहुत स्किल्स होती हैं लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमें शऊर नहीं होता तो हम अपनी नेकियां कम कर लेते हैं। तो हर चीज़ पे अपने इसको सोचिए, मुझे क्या क्या आता है। चलिए कंप्यूटर आता है ना, तो कंप्यूटर से उन सिस्टर्स को जो कहीं जाके नहीं सीख सकती उनको कंप्यूटर क्लासेस से जोड़ दें, ये आपका नफ़ा हो गया। तो स्किल्स को फ़ायदेमंद बनाना ये इसकी दुआ है। अब दूसरी दुआ जो इसमें वो इसकी बिल्कुल अपोजिट है, वालिमना मा यनफाउना, के अल्लाह आज के बाद जो भी इल्म हासिल करूँ वो करूँ जिससे नफ़ा मिले। यानी वही जो ऊपर हमने बात की थी ना कि ऐसा इल्म मिन इल्म ला यनफाउ, उससे पनाह दे अल्लाह ताला जो इल्म मुझे नफ़ा ना दे। अब ये उसका अपोजिट है, वो इल्म सीखूँ जिससे नफ़ा हो। मैं आपसे ही पूछती हूँ किस इल्म से नफ़ा होगा अब आपको? मुझे किसी से पता चला कुरान सीख रही थी, फिर क्या उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जी कंप्यूटर कोर्स शुरू कर दिया, क्या मिलेगा? जॉब मिलेगी। नॉर्वे में जो हमारा स्कूल है ना वो इस तरह से है कि हमारे से नीचे जो फ्लोर है ना उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोर्सेज ऑफर होते हैं। नॉर्वे गवर्नमेंट को ये बहुत गम है कि लोग फारिग ना बैठें, तो लोगों को पैसे चुके देते हैं, सोशल हेल्प करते हैं, फिर जो जॉब नहीं करते फिर उनको कहते हैं आपको स्किल सीखे तो हम आपको पैसे, तो उन्होंने देने ही देने हैं, तो कहते हैं अच्छा घर बैठ के क्यों दें, आप आए कंप्यूटर सीखें फिर आपको कंप्यूटर की जॉब मिल जाएगी, आप बच्चों की बेबी सिटिंग सीखें तो मिलेगी, इस तरह करते हैं। तो एक दिन स्कूल जाने के लिए हम जब अपने लिफ्ट में बैठे जगह, तो बिल्कुल ओल्ड आंटी पाकिस्तानी, जिसको टिपिकल देसी आंटी, नानी अम्मा की जो जहन में फीलिंग आती है ना वो ना आऊँगी, 50s 60s के बीच में होंगी, और देखने और बात करने से बिल्कुल लग रही थी कि वही जैसे हमारी नानियाँ थी, 5 जमातें नहीं पढ़ी। तो मैं समझी कि ऊपर हमारे पास नूरुल कुरान में आ रही हैं, वो समझी कि मैं उनके साथ कंप्यूटर कोर्स में जा रही हूँ। हर कम लिफ्ट में सलाहाल पूछा क्या हाल है, ठीक है, टिपिकल पंजाबी लहजे में, मतलब ठीक हो। तो मैंने कहा आप ऊपर जा रही हैं ना कोर्स कर रही हैं, क्योंकि नए कोर्स शुरू हुए थे तो नए लोग आ ही रहे थे। तो कहती हाँ मैंने कोरस कोरस शुरू किया। तो मैंने कहा कौन सा कोरस, तो कहती डाटा कोर्स, डाटा नॉर्वेजियन में कंप्यूटर्स को कहते हैं ना, कंप्यूटर में। फिर मुझे सारी कहानी सब, मैंने कहा आप नौ के कोर्स में जा रही, कहती जी। मैं कहा तुसी की करना कंप्यूटर सीख के, यानी अब मैंने उनकी टोन ली तो उनको समझ आ गई इनको भी पंजाबी आती नहीं, वो गवर्नमेंट कहती कर नहीं बैठो तुसी कंप्यूटर सीखो। मैं कहा तुसी एक फ्लोर होर ऊपर आ जाओ, उसी तुहानू भी सिखा देंगे, तुसी इस उम्र च की करना, कहती मैं कहा तुहानू कुछ समझ आता, कहती कोई भी नहीं, सिर्फ घंटे पूरे करने के लिए लोग बैठते, हमारे सारे साथी दिन रात इसी खेल में हम वहाँ से गुजरते हैं कि क़यामत के दिन हमने नाव को नहीं बख्शना, इसने हमारे कितने साथी स्टाफ के ले लिए और कितने हमारे फोकस स्टूडेंट ले लिए, वो अच्छे भले चल रहे होते एकदम नाव बुला लेती है कि आए जी कोर्स करें फिर आपको पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं। तो खेल तो सारा पीछे पैसों का ही होता है, लेकिन वो मजबूरियाँ बन जाती हैं। तो मेरा उस दिन दिल बड़ा ही दुखी हुआ, मैंने सोचा कि पैसे जो गवर्नमेंट ने इसको देने ही देने हैं, मुझे भी पता है उसको भी पता है, लेकिन अब गवर्नमेंट मजबूर करती है, कुछ अरसे देती है ना फिर वो आवाज़ लगाती है घर में क्यों बैठे हुए आओ कोई कंप्यूटर कोर्स करो, कुछ करो, जॉब करो फिर मिलेंगे। इस उम्र में एक बूढ़ी औरत जिसने पाकिस्तान में शायद कलम भी नहीं कभी पकड़ा होगा, मुझे नहीं उम्मीद कि ये माउस भी सही पकड़ सकती है, इनको बटनों पर ABC भी पढ़नी आती है, ये घर से इस उम्र में निकली है। तो कितने दिन, हफ्ते में 5 दिन, सुबह 9 से लेकर या 8 से लेकर 3 बजे तक का वो स्कूल होता है। मैंने कहा इतनी कशिश है कागज़ के इन टुकड़ों में कि इस उम्र की आंटी जी आ गई हैं कोर्स करने, लेकिन कुरान की कोर्स में इतनी भी अट्रैक्शन नहीं, हज़ारों बाहर फिर रहे हैं जिनको ज़रूरत है लेकिन लोग नहीं आते, दुख की बात है ना। तो आपने ये जो कुरान सीखने का फ़ैसला किया ना, ये फ़ैसला है कि अल्लंतनी बीमा यनफाउनी, के अल्लाह आज तक जो सीखा ये तो बेतुका ही सीखती रही, अब वो इल्म दे जो मुझे सही फ़ायदा दे। हम में से किसको पता है हमारी ज़िंदगी के कितने दिन बाकी हैं, पता है आपको, मुझे नहीं पता। तो क्या हम उस इल्म को लेते हुए दुनिया से ना जाए कि जिसके बाद कुछ भी ना नफ़ा मिले तो हमारी मौत तो शहादत की हो जाएगी ना। परिंदों की दुआएं, मछलियों की दुआएं, चींटियों की दुआएं तो मिलेंगी। तो आज से अपने इस इल्म के सफ़र, इस कुरान के सफ़र के साथ ये दुआ जोड़ ले कि वालिमना मा यनफाउना, और फिर तीसरी दुआ है वजीदना इल्मा। ये दुआ तो मुझे ऐसे लगता है कि इल्म का सारा गुरूर तोड़ देती है, बड़ा अपमान करते हैं हमने पढ़ा हुआ जी, हम तो पढ़े हुए, हमने पिछले साल कोर्स कर लिया था, ज़रा टेस्ट लेके देखें समझ सारी आ जाएगी, 4 लोगों को मैं तर्जमा सुनाने को कह दें तो हाथ बहुत ठंडे होंगे। नहीं, ज़िद ना इल्मा क्या है कि अगर पहले इल्म हासिल किया था ना तो अल्लाह अब और करवा, एक तो बस सीख लिया अब और सीखने वाला बना, सीखने में मददगार बना। यकीन कीजिए आप साथी जो सीखने के लिए आए हैं ना, आप जितना इस कोर्स से फ़ायदा उठाएंगे ना उससे शायद 10 गुना वो साथी फ़ायदा उठाएंगे जो कोर्स कर चुके हैं और अब आपके हेल्पर हैं। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ ये बात, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा चख लिया, उनका इंटेलेक्ट थोड़ा बुलंद हो गया, अब आप जब दोबारा सीखते और किसी दिन भी उनको ये फील नहीं होगा कि ये बात पहले सुनी हुई थी कही हुई बात। मैं खुद बिलीव मी डिफरेंट क्लासेस में थोड़ा बहुत सुनती हूँ, ऑनलाइन पे इधर उधर चलते फिरते कानों में पड़ता है, मैं कोई बात सुनी होती तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, ये मैंने कब कही थी, इन्होंने किसी की आवाज़ मेरी में बदल दी है। अंदर से निकली हुई बातें, और अक्सर 90% बातें मैं बगैर लिखे करती हूँ, पढ़ा होता है फिर अंदर जज्ब किया होता है उसको बोलती हूँ, यानी कोई नोट्स नहीं, अभी भी मेरे हाथ में कोई नोट्स नहीं है, आप लोग देख लें, कुछ नहीं बोलती, अपने अपने जो पढ़ना होता है उसकी तैयारी करके आती हूँ, लेकिन नोट्स नहीं मेरे पास, बहुत कम होते हैं, कोई छोटी छोटी पर्ची जिसमें कोई फिगर्स या फैक्ट्स लिखने हो, दैट्स इट। तो मैं हैरान होती हूँ कि ये मैंने कब बोला था, अगर अच्छा मैं सोचूं कब, बल्कि अभी एक हमारी मीटिंग थी तो मैंने साथियों से कहा कोई मेरे पे एक रहम करे, आप में से अभी तक जितने कोर्सेज किए स्टूडेंट्स से नोट्स लेते हैं ना, आप सारे नोट्स को जमा करें हर कोर्स के स्टूडेंट, और उसमें डबलिंग डबलिंग निकाल के सिंगल एक टेक्स्ट में मुझे दें, ताकि मैं सारे 8 से 5-6 दफ़ा कितनी दफ़ा तो पढ़ा चुके हैं, तो उन सबको जमा करके कहते हैं ना कि समराइज करके, तो मैं उसको एक बार फिर पढ़ा दूँ। तो मैं सोचती हूँ स्टूडेंट्स के पास तो लिखा हुआ ज़्यादा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इल्म की तलब रहती है। तो कभी ये ना तड़प ख़त्म करें कि हमें अब और नहीं चाहिए। किसी को दावत दी, नॉर्वे की बात है, वो स्टूडेंट थी पिछले साल किसी कोर्स में आई, उनके साथ कोई ऐसा मरहला आ गया जो आप में से भी आ सकता है, बी अवेयर, पाकिस्तान चली गई किसी शादी के लिए, 4 माह लगाएं। जाने से पहले वो मुझे बता रहे थे, खुद उनके सामने उनकी बहन जो भी थी कज़न बता रही थी, इतनी डेडिकेटेड थी कि ये 9 से 1 मिनट भी ऊपर नहीं लगाती थी, यानी 9 से पहले स्कूल में पहुँचती थी। वहाँ हमारे 9 o'clock क्लासेस शुरू होती हैं, 8:30 भी शुरू होती हैं कुछ, लेकिन जब पाकिस्तान गई, सूरह बकरा उन्होंने कर ली थी, और उसके बाद वो पाकिस्तान क्या गई कि आज तक वापस ना सकी, सुस्ती पड़ गई, अब दी इतना वो गुजर गई और नहीं, वो कोर्स पूरा हो गया नहीं आई। अब चूंकि नया कोर्स शुरू हुआ तो उनके घर ही हम गए हुए थे, तो इन्होंने मुझे कहा उस्ताद इसको पकड़े, ये हमारी भागी भी पुरानी स्टूडेंट है, इसको लगाएं इसको ना। तो खैर जब किस्सा मुझसे जब बात आपको समझानी है सुनानी है, वो कहती उनको कहा सुना, कहती सूरह बकरा तो मैंने पढ़ी हुई है, अब मैं सूरह आले इमरान से शुरू करूँगी। मैंने कहा आप कितनी कितना आपका ज़र्फ आला बुलंद है, आप एक दफ़ा सूरह बकरा पढ़ के इतनी माशाल्लाह सैचुरेटेड है कि आप अब दोबारा लेना ही नहीं चाहती, कि अब मैं उस दिन आऊँगी जिस दिन सूरह आले इमरान आएगी। तो नहीं, बस इतना इल्म, तलब तड़प। मैं कहती हूँ जैसे खाना थोड़े दिन एक दफ़ा खा के कहते हो खा लिया था ना कल, अब क्या खाना, भूख लगती है ना, वही चीज़ जिससे आपका पूरा दिल भर चुका हो, एक हफ्ते के बाद दोबारा कोई ऑफर करे तो आप कहते ले आइए। तो कुरान का इल्म कभी भी पेट नहीं भरता। हदीस में आता है कि जो बंदो भूखे कभी नहीं भरते हैं उनके पेट, दुनिया चाहने वाला और इल्म चाहने वाला। अब इस वक्त आप घर भी तो हो सकते थे ना, जो आप नए लोग हैं वो भी और जो पुराने भी, क्या कर लेते, क्या तीर मारते इस वक्त तक आप सुबह से लेके अब तक, हंडिया पकाने में अब ज़रा और घंटा लगाते, भिंडियों को प्यार से काटते एक ऊपर से नीचे से, उसके छे छे टुकड़े करते, फिर बड़े स्लो मोशन में ऑयल डालते, फिर उसको फ्राई करते, फिर निकालते, फिर आप धनिया डालते, पता नहीं क्या कुछ डालते, तो पकनी तो एंड पे भिंडियाँ ही थी। यहाँ के आपको क्या मिला, सिर्फ सुबह से लेके अब तक के सारे वक्त को गिन के देख लीजिए आपने क्या लिया। तो इंशाल्लाह ये दुआएँ आपके लिए खैर का ज़रिया बनेंगी। आखिरी दुआ पे चलते हैं, जो बड़ी खूबसूरत दुआ है, जो आपको मैं खुद ही सिखाऊंगी अपने खिलाफ। पहले दुआ मांगते हैं, आइए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक्ना इत्तबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक्ना इज्तनाबहु برحمتك يا ارحم الراحمين ایک ایک ترجمہ لکھتے ہیں اللهم اے اللہ لکھے گا اللهم اے اللہ ارینا دکھا مجھ کو دکھا ہم کو مجھ کو کاٹتے ہیں ارینا دکھا ہم کو الحق حق حقا हक बनाकर अल्लाहुम्मा ए अल्लाह अरीना दिखा हमको या सुझा हमको अल हक हक हक्कन हक बनाकर वर्ज़ुक्ना और तौफीक दे हमको इत्तबाअहु इसकी इत्तबा की यानी हक को हक देखें फिर इसको मानने की तौफीक भी दे व अरिनल बातिला और दिखा हमको बातिल बातिलन बातिल बनाकर वर्ज़ुक्ना और अता हम फरमा सॉरी और तौफीक दे हमको इज्तनाबहु इससे बचने की इज्तनाब उर्दू में भी हम बोलते हैं यानी इससे बचने की तौफीक दे बेरहमतिका साथ तेरी रहमत के या रहमर रहमीन ए सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाले सब रहम फरमाने वालों से। एक स्ट्रेच में क्या तर्जमा होगा, अल्लाहुमारिन अल्हक्क हक्कन वर्जुकन इत्तेबाअहू, ए अल्लाह हक को हक बनाकर दिखा और फिर उसको मानने की तौफीक भी दे। वारिनल बातिला बातिलन वर्जुक नचतिनाबहू, और बातिल को बातिल करके दिखा और उससे इज्तनाब की तौफीक भी दे। बिरहमतिक या रहमर रहीमीन, साथ तेरे रहम के, ऐ सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाले रहम फरमाने वालों में से। ओ अल्लाह, लेट अस सी द गुड एज गुड एंड ब्लेस अस विद फॉलोइंग इट एंड शो अस द फॉल्सहुड एज फॉल्सहुड एंड ब्लेस अस विद स्टेइंग अवे फ्रॉम इट विद योर मर्सी ओ मोस्ट मर्सीफुल। कभी भी आपको किसी के बारे में शक हो, लोग भी डालते हैं शक, कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारी सोच बदल देंगे, ये कुरान क्यों पढ़ने लग गई, कुछ और करो, जॉब करो, अब आपके ऊपर मामला मुश्तबे होता है। जैसे गाय का वाक्या पढ़ेंगे सूरह बकरा में, गाय का मामला उनमें मुश्तबे हो गया था। जब कभी आपको किसी इल्म वाले पे शक आए तो आप ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्क हक्कन, के अल्लाह अगर ये हक वाले लोग हैं, इनके पास हक है तो मुझे दिखा, वर्जुकना इत्तबा, और फिर मैं इनको मानती रहूँ, इत्तबा करती रहूँ इस इल्म की। हाँ, अगर इनके मोटिव ख़राब हैं, ये ख़राब लोग हैं, ये मेरा अकीदा बदल देंगे, मेरी सोच बदल देंगे, तो वारिनल बातिला बातिलन, तो मुझे इनका बातिल होना दिखा, इनकी ख़राबियाँ दिखा, और वर्जुक न इज्तनाबहू, फिर मुझे इनसे इज्तनाब का रिस्क दे दे। बिरहमतिक या अरहमुर राहिमीन, तेरी रहमत के साथ है बहुत रहम करने वाले। इंसान अल्लाह ताला की मदद के बग़ैर हक और बातिल का फ़र्क भी नहीं कर सकता। अल्लाह की ज़ात अल हक है, तो हक को हक करके वही दिखाती है। तो गोया कि ये दुआएं हमें क्या सिखाती हैं कि हम अपने आप को अल्लाह के हाथों में डालकर इस बात का इकरार करें कि अल्लाह, एक बच्चा भी अपने माँ बाप की उंगली थाम कर चलने का हकदार होता है ना, तो हम भी तेरा हाथ थामे बगैर हक और बातिल का फ़र्क नहीं कर सकते। पूरे यकीन और शरह सदर से इस दुआ को पढ़ें। मैंने अपने कुरान पाक की पहली जिल जो थी उसकी दर जो बाहर जिल थी ना, उस पर यह दुआ लिखी हुई थी कि अल्लाहुमारिन अलहक का हुक्म वर्जुक न इत्तबा। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कदम नहीं डगमगाए। मुझे तो कोई कहना चाहिए कि सूरज की रोशनी की तरह खोल कर भी दिखा देना कि ये कुरान का पढ़ना पढ़ाना ठीक नहीं है, और या जो आप पढ़ रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो मैं तो कभी ना मानूँ। इतना दिल जमा हुआ है, 100% यकीन है इस बात पे, तो दिल जमा हुआ है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये ठीक है। अपनी ज़ाती कमियाँ कोताहियाँ बहुत है, कोई आपको कहता है किन के पास जा रहे हैं, ये कौन है नूरुल कुरान वाले, ये क्या सिखाते हैं, तो फ़ौरन ये दुआ पढ़ लें। तो अगर हम अच्छे लोग नहीं हैं तो अल्लाह आपको हटा दे। फिर अब पता चला नफ्स में कोई ख़राबी बढ़ी हुई थी, खुद ही दिल पीछे हो गया, ये आपका रब का मामला है। पहले अल्लाह से फहम मांगे, क्योंकि ईमान जो होता है ना ये फुरकान पैदा करता है। ख्वाहिशें दिल में जमी हो तो किसी को कुरान नहीं अच्छा लगेगा, वो कहेगा हाँ हाँ नहीं जॉब ही अच्छी थी हमने कर ली, जी आपने कहा था दुआ पढ़ लो हमने पढ़ ली, तो उससे पहले ये दुआ ना मांगे जब तक कि फुरकान ना पैदा हो। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे लिए इल्म को आसान करते हैं। आइए मिलके पढ़ते हैं इस आखिरी दुआ को एक बार फिर, अल्लाहुम्मारिनल हक्क हक्कन वर्ज़ुक्ना इत्तबाअहु वारिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक्ना इज्तिनाबहु बिरहमतिक या रहमर राहिमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुआएं इंशाल्लाह पूरी हुई हमारे इस कार्ड की। आप इनको भी मंडे को कार्ड्स, ट्यूसडे को कार्ड्स ये वाले दे दीजिएगा, और हर क्लास के शुरू में इसको मिल के पढ़ें और सारे मानी मफहूम पे गौर व फिक्र करते जाएंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके बाद आपका दिल खुलने लगेगा। जज़ाकल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्होंने पूछा कि कैसे पता चले कि हमारे अंदर फुरकान आ गया कि नहीं आया, तो कुरान पाक में सूरत तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो मैं तुम्हारे अंदर फुरकान पैदा कर दूंगा। तो जितना आपके अंदर अल्लाह का तकवा और खौफ आता जाएगा उतना फुरकान आएगा। पता कैसे चलेगा आपकी अमली ज़िंदगी से? साफ साहिर है, अल्लाह की नाफरमानी का काम करने से पहले ही रुक जाएंगे। जब रुक जाएँ समझें फुरकान आ गया। करते रहें फिर बाद में कहें कि अब रुकेंगे देखेंगे तो फुरकान की कमी है। ठीक है सर जी। सिस्टर अहिला पाजी आप इनको तो छोड़ देना, इनके बगैर नहीं रह सकते। नहीं मैं उसको सुना रही हूँ। बेटा मामा को कहो मुझे छोड़ दिया करो कभी। इतना बुरा लगा उसको।